एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की पड़ताल कर रहे हैं, एंथनी बॉर्डन की किचन कॉन्फिडेंशियल एडवेंचर्स इन द क्यूलिनरी अंडरबेली। ये 2000 में आई थी और इसने मतलब फूड राइटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था।
हाँ, तहलका कहना बिल्कुल सही होगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक तरह का क्या कहते हैं धमाका था। इसने न सिर्फ बॉर्डन को मशहूर किया बल्कि पूरी पेशेवर रसोई की जो अंदरूनी अक्सर अनदेखी दुनिया है उसे सबके सामने ला दिया।
सही कहा। और एंथनी बॉर्डन खुद भी एक असाधारण शख्सियत थे, एक अमेरिकी शेफ, लेखक, टीवी होस्ट।
बिल्कुल, और उनका सफर भी कमाल का रहा है। मतलब एक गुमनाम लाइन कुक जो नशे की लत से जूझ रहा था, वहां से उठकर वो खाने, घूमने और संस्कृति पर दुनिया की सबसे जानी मानी आवाजों में से एक बने।
तो आज उनकी कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? 20 साल से ज्यादा हो गए किताब को आए हुए।
मेरे ख्याल में उनकी जो बेबाक ईमानदारी थी ना, वो आज भी बहुत मायने रखती है। उन्होंने वो जो सेलिब्रिटी शेफ का ग्लैमरस मुखौटा था उसे बिल्कुल नोच डाला।
हाँ, और दिखाई रसोई की असली दुनिया।
बिल्कुल, जो अक्सर मतलब काफी क्रूर भी होती है, जहां नशा था, दबाव, जुनून, यहां तक कि हिंसा भी, और साथ ही कमाल का टीमवर्क भी। ये सिर्फ बॉर्डन की कहानी नहीं थी, ये उन लाखों किचन वर्कर्स की आवाज बनी जो दिखते नहीं है, और आज के दिखावे के दौर में उनकी प्रामाणिकता वो असल चीज है।
तो चलिए बॉर्डन के इस सफर को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या माहौल था?
उनका जन्म न्यूजर्सी में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। पिता म्यूजिक इंडस्ट्री में थे, माँ न्यूयॉर्क टाइम्स में संपादक, तो माहौल काफी पढ़ा लिखा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था।
अच्छा,
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी परवरिश के बावजूद या शायद इसी वजह से उनके अंदर एक तरह का तनाव हमेशा रहा। एक तरफ ये बौद्धिक माहौल, दूसरी तरफ उन्होंने जानबूझकर सर्विस इंडस्ट्री के मतलब थोड़े निचले अराजक हिस्सों को चुना।
ये विरोधाभास उनकी पहचान का हिस्सा बन गया।
बिल्कुल, और शायद पहला बड़ा मोड़ बचपन में ही आ गया था।
हाँ, वो फ्रांस वाला किस्सा, 10 साल की उम्र का।
वही, परिवार के साथ फ्रांस गए थे और वहां एक मछली पकड़ने वाली नाव पर पहली बार कच्चा ऑयस्टर खाया। उन्होंने लिखा है कि वो एक तरह का धार्मिक अनुभव था।
धार्मिक अनुभव खाने को लेकर?
हाँ, मतलब पहली बार ये एहसास कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये एक गहरा इंद्रियों से जुड़ा अनुभव हो सकता है, प्रामाणिकता से पहला सामना। और बस उसी दिन से फ्रेंच खाना, फ्रेंच संस्कृति उनके लिए कसौटी बन गई जिंदगी भर के लिए।
और किशोरावस्था, क्या वो आम टीनेजर जैसे थे?
कुछ हद तक बेचैनी तो थी, वो जो उपनगरों की एक जैसी जिंदगी होती है ना, उससे ऊब। पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन दिलचस्पी थी काउंटर कल्चर लेखकों में, जैसे विलियम बरोज, हंटर एस थॉम्सन। मतलब लीक से हटकर चलने की चाहत साफ दिख रही थी।
और इसी चाहत ने उन्हें कॉलेज के बजाय एक अलग रास्ते पर डाल दिया।
सही, वो पारंपरिक अकादमिक रास्ते पर नहीं गए, उन्होंने न्यूयॉर्क के हाइड पार्क में मशहूर क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका यानी CIA में दाखिला ले लिया।
CIA, वो खाना पकाने वाला स्कूल?
हाँ, लेकिन 1970s के दशक का CIA आज जैसा नहीं था, वो ज्यादा एक ट्रेड स्कूल जैसा था। वहां समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग, मतलब थोड़े मिसफिट्स, यहां तक कि पूर्व अपराधी, वर्किंग क्लास बच्चे आते थे। यहीं बॉर्डन ने पहली बार पेशेवर रसोई को एक हुनर, एक ब्लू कॉलर क्राफ्ट के तौर पर देखा।
तो वहां सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सीखा उन्होंने?
नहीं नहीं, खाना तो था ही, फ्रेंच टेक्निक्स वगैरह,
लेकिन कल्चर भी।
हाँ, वो किचन का जो कल्चर होता है ना, उसकी असलियत, रोड़ता, वो डार्क ह्यूमर, भयंकर दबाव झेलने की क्षमता, और सबसे बढ़कर टीम वर्क। उनकी पहली नौकरी प्रोविंस टाउन मैसाचुसेट्स में एक सी फूड रेस्टोरेंट में थी। वहां उन्होंने सीखा कि किचन में आपकी डिग्री या आप कहां से आए हैं ये मायने नहीं रखता।
क्या मायने रखता है?
आपकी काबिलियत और क्या आप टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
बस इसके बाद का दौर तो काफी मुश्किलों भरा रहा उनके लिए, वो जिसे वाइल्डनेस ईयर्स या जंगल के साल कहते हैं।
हाँ, वो करीब 2 दशक न्यूयॉर्क शहर के अलग अलग किचन में काम करते रहे, कभी अच्छे रेस्तरा, कभी छोटे बिस्ट्रो, और ये वो वक्त था जब वो हेरोइन की लत से बुरी तरह जूझ रहे थे।
ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा।
बहुत ज्यादा, पेशेवर तौर पर भी कहीं टिक नहीं पा रहे थे। यही वो साल थे जिनका कच्चा चिट्ठा हमें किचन कॉन्फिडेंशियल में मिलता है। वो हताशा, वो अराजकता, किचन का दबाव और ऊपर से नशे की गिरफ्त। उस वक्त नशा किचन कल्चर का एक हिस्सा जैसा बन गया था, एक स्याह हिस्सा, और बॉडिन ने इस बारे में बिना किसी लाग लपेट के लिखा।
तो इस अंधेरे दौर से निकले कैसे हो? कोई बड़ा मोड़ आया?
हाँ, एक बड़ा ब्रेक मिला। 1990 के दशक में उन्हें मैनहट्टन में ब्रासरी लेस हॉल्स नाम के एक मशहूर जगह पर एग्जीक्यूटिव शेफ की नौकरी मिली।
ब्रासरी लेस हॉल्स?
हाँ।
ये वही जगह जिसके बारे में किताब में काफी कुछ है।
हाँ, बिल्कुल। ब्रासरी मतलब वो फ्रेंच रेस्टोरेंट जहाँ माहौल थोड़ा अनौपचारिक होता है और खाना क्लासिक, बिना ज्यादा तामझाम वाला। ये नौकरी उनके लिए एक ठहराव लाई, स्थिरता मिली, और यहीं से उन्होंने धीरे धीरे नशे से बाहर निकलने की असल कोशिश शुरू की।
और यहाँ उनकी खाना बनाने की शैली कैसी थी? कुछ खास मॉडर्न स्टाइल?
स्टाइल सीधी सादी थी, क्लासिक फ्रेंच बिस्ट्रो खाना। वो रेसिपी की प्रामाणिकता और परंपरा का बहुत सम्मान करते थे। दिखावा पसंद नहीं था उन्हें, मतलब बुनियादी चीजों को बेहतरीन तरीके से करना, शायद यही उनकी खासियत थी।
और यहीं से लिखने की शुरुआत भी हुई।
हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए उन्होंने फूड मैगजीन्स के लिए लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते उनकी वो अपनी खास आवाज बन गई, बेबाक, ईमानदार, इंडस्ट्री के राज खोलने वाली।
और इसी आवाज ने जन्म दिया किचन कॉन्फिडेंशियल को।
बिल्कुल, 2000 में किताब आई और रातों रात सब बदल गया। वो गुमनाम शेफ से लिटरेरी सेलिब्रिटी बन गए।
और फिर टेलीविजन का सफर शुरू हुआ।
हाँ, एक कुक्स टूर, नो रिजर्वेशंस, पार्ट्स अननोन। इन शोज के जरिए वो सिर्फ शेफ या राइटर नहीं रहे, वो एक तरह से कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब सांस्कृतिक मानव विज्ञानी बन गए।
सही, उन्होंने खाने को एक लेंस की तरह इस्तेमाल किया दुनिया को देखने के लिए।
बिल्कुल।
राजनीति, इतिहास, इंसानी रिश्ते, सब कुछ खाने के बहाने समझा और समझाया। और जैसे जैसे वो ज्यादा मशहूर हुए, उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों के लिए भी किया।
हाँ, खासकर बाद के सालों में, अप्रवासी मजदूरों का साथ कैसा बर्ताव होता है, फूड इंडस्ट्री में महिलाओं की क्या स्थिति है, इन सब पर वो खुलकर बोले। उन्होंने हैशटैग मूवमेंट का भी काफी जोरदार समर्थन किया था।
लेकिन इतनी शोहरत, इतनी सफलता, इसके बावजूद उनका अंत बहुत दुखद रहा।
हाँ, ये शायद उनकी कहानी का सबसे मुश्किल और जरूरी सबक है। 2018 में फ्रांस में उनकी आत्महत्या की खबर ने सबको चौंका दिया था।
ये दिखाता है कि बाहरी सफलता अंदरूनी संघर्षों का हल नहीं है।
बिल्कुल, डिप्रेशन एक असलियत है, चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो। शायद वो जो उनकी गहरी संवेदनशीलता थी, जिसने उन्हें इतना अच्छा ऑब्जर्वर और राइटर बनाया, वही उन्हें अंदर से कमजोर भी बनाती थी।
चलिए अब बॉडेन के मूल दर्शन पर आते हैं। उनके मूल्य क्या थे? दुनिया को देखने का उनका नजरिया कैसा था?
उनका पूरा नजरिया किचन के तजुर्बे से बना था। उनके लिए असल चीज प्रामाणिकता हमेशा दिखावे से बढ़कर थी।
और मेहनत?
हाँ, कड़ी मेहनत किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा जरूरी थी। उनका मानना था कि सबसे अच्छा खाना अक्सर सबसे मामूली, अनपेक्षित जगहों पर मिलता है। हुनर, क्राफ्ट उनके लिए कलाबाजी, आर्टिस्ट्री से बड़ा था। परंपरा नवीनता से, और ईमानदारी मार्केटिंग से।
किताब में मीजन प्लास का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ किचन में सामान सजाकर रखना तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए एक जीवन दर्शन जैसा था। तैयारी का महत्व, प्रक्रिया का सम्मान करना, हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना।
अच्छा।
उनका मानना था कि किसी भी चीज में माहिर होने के लिए पहले बेसिक्स, बुनियादी बातों पर पकड़ बनानी होती है। आप सीधे कुछ नया या फैंसी करने नहीं कूद सकते। यह अनुशासन और अपने काम के प्रति सम्मान दिखाता है।
और वो रसोई को पायरेट शिप यानी समुद्री डाकुओं का जहाज क्यों कहते थे?
उनका मानना था कि पेशेवर किचन अक्सर ऐसे लोगों को खींचते हैं जो शायद बाकी समाज में ठीक से फिट नहीं होते, मतलब मिसफिट्स, बागी किस्म के लोग।
बाहरी लोग।
हाँ, और वो इस बाहरीपन का जश्न मनाते थे। वो कहते थे कि सबसे अच्छे रसोइये अक्सर वही होते हैं जिनके अंदर कुछ साबित करने का जुनून होता है, या जो किसी चीज से भाग रहे होते हैं। इस माहौल में एक अजीब सी वफादारी और ऊर्जा होती है।
उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? क्या चीज उन्हें ड्राइव करती थी?
कई चीजें थी। एक तो खुद को साबित करने की जबरदस्त इच्छा, दूसरा उन लाखों गुमनाम किचन वर्कर्स को आवाज देना जिनकी मेहनत कोई नहीं देखता, लाइन कुक, डिशवाशर।
हाँ, ये बात उन्होंने बार बार कही।
और तीसरा, खाने को अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल की तरह इस्तेमाल करना।
मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका भी किचन से ही आया लगता है।
बिल्कुल, किचन का सीधा नियम है, शिकायत मत करो, काम करो, समस्या है तो उसका हल निकालो, बहाने नहीं। उन्होंने दर्द और थकान को अनदेखा करना सीखा। काम में डूब कर ही उन्हें सार्थकता मिलती थी। काम उनके लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो एक अनुशासन था, एक ढांचा था।
और नशे की लत और रिकवरी पर उनकी जो ईमानदारी है, वो भी कमाल की है।
हाँ, वो इसे कोई ऐसी मंजिल नहीं मानते थे जहां आप पहुंच गए और सब ठीक हो गया। उनके लिए रिकवरी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी
जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं।
बिल्कुल, और वो अपनी असफलताओं, अपने रिलैप्स के बारे में भी पूरी ईमानदारी से बात करते थे। ये बहुत हिम्मत की बात है। और उनका एक और सिद्धांत था, असुविधा को गले लगाना।
मतलब
असली तरक्की आराम में नहीं होती, चुनौती झेलने से होती है। यही सोच उनके टीवी शोज में भी दिखती थी, जहां वो अनजान और अक्सर मुश्किल जगहों पर जाते थे।
अगर बॉडिन के जीवन के तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हो जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से होंगे? पहला तो शायद वो ऑयस्टर वाला ही था।
हाँ यकीनन, 10 साल की उम्र, फ्रांस, और वो पहला कच्चा ऑयस्टर। वो सिर्फ एक स्वाद नहीं था, वो एक तरह की पाक जागृति थी।
खाने को लेकर नजरिया बदल गया।
बिल्कुल, भोजन एक गहरा अनुभव बन गया, प्रामाणिकता का पहला पाठ, और फ्रेंच संस्कृति से आजीवन जुड़ाव की शुरुआत। ये उनके जुनून की नींव थी।
और दूसरा मोड़?
इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, CIA जाना।
अच्छा, ये क्यों इतना अहम था?
क्योंकि यह सिर्फ करियर का चुनाव नहीं था, यह समाज की पारंपरिक उम्मीदों को नकारना था, यह वर्किंग क्लास मूल्यों को, मेहनत को अपनाना था। इसने उन्हें सीधे किचन की भट्टी में झोंक दिया, उन्हें ऐसी विविधता दिखाई जो उनके पहले के जीवन में नहीं थी। इसने अगले 2 दशकों के उनके संघर्ष और अनुभवों की जमीन तैयार की।
और तीसरा, जिसने उन्हें वो बनाया जो हम उन्हें जानते हैं, किचन कॉन्फिडेंशियल का छपना।
हाँ बिल्कुल, 44 साल की उम्र में वो किताब आई, एक गुमनाम संघर्ष करते शेफ का रातों रात दुनिया भर में जाना जाने वाला नाम बन जाना।
ये सिर्फ शोहरत नहीं थी।
नहीं, ये एक मंच था, उन लोगों के लिए बोलने का मंच जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उन संस्कृतियों को समझने और समझाने का मंच जिन्हें अनदेखा किया जाता था। इसने उन्हें एक लेखक के तौर पर स्थापित किया, और फिर टीवी के जरिए उनके सांस्कृतिक सफर का अगला अध्याय शुरू हुआ।
तो बॉर्डन की कहानी से, उनकी किताब से, आज के दौर में हम क्या सबक सीख सकते हैं? बहुत कुछ है लगता है।
हाँ, बहुत कुछ। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक तो प्रामाणिकता का है। आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ हर कोई अपनी एक परफेक्ट गढ़ी हुई छवि पेश करने में लगा है।
हाँ बिल्कुल,
वहाँ बॉर्डन की बेबाकी, उनकी कच्ची ईमानदारी एक ताजी हवा जैसी है। वो याद दिलाते हैं कि अपनी असलियत को, अपनी कमियों को स्वीकारना कितना जरूरी है,
और असफलता या संघर्षों से शर्मिंदा न होना।
सही कहा, उन्होंने अपनी मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाइयों, नशे की लत के बारे में खुलकर बात की। ये दिखाता है कि कमजोर महसूस करना या मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। उनका जीवन ये भी बताता है कि काम, खासकर कोई हुनर वाला काम, मुश्किल वक्त में भी आपको एक सहारा, एक ढांचा दे सकता है।
और हर काम का सम्मान करना है ना, खासकर वो काम जो पर्दे के पीछे होता है।
एकदम, वो उन अदृश्य कामगारों का सम्मान करते थे, किचन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, अप्रवासी मजदूर, वो लोग जो असल में दुनिया को चलाते हैं। ये बात आज आर्थिक असमानता और काम की गरिमा की बहस में बहुत अहम है।
उनकी रिकवरी की कहानी भी यही सिखाती है कि ये कोई सीधी राह नहीं है।
बिल्कुल, उतार चढ़ाव आते हैं, और ये ठीक है, ये समझना भी एक बड़ा सबक है।
और जिस तरह उन्होंने खाने को संस्कृतियों को जोड़ने का जरिया बनाया।
हाँ, वो आज की बटी हुई दुनिया में बहुत जरूरी है। खाने के जरिए दूसरों को समझना, उनका सम्मान करना, ये संवाद का एक बहुत ताकतवर तरीका हो सकता है।
लेकिन आखिर में उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है
कि
भारी सफलता अंदरूनी अकेलेपन या संघर्ष का जवाब नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एक लगातार चलने वाली लड़ाई हो सकती है, चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों न हो।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर 3 खास बातें हमें बॉर्डन और किचन कॉन्फिडेंशियल से लेके जानी हो, तो वो क्या होंगे? देखिए, पहली चीज जो मुझे लगती है वो है एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। बॉर्डन की यात्रा दिखाती है कि गहरे से गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी, दशकों के विनाशकारी व्यवहार के बाद भी, इंसान बदल सकता है, वापसी कर सकता है।
ये उम्मीद देती है।
हाँ, ये उम्मीद देती है, लेकिन साथ ही ये कड़वी सच्चाई भी बताती है कि बाहरी कामयाबी जरूरी नहीं कि आपके अंदर के जख्मों को भर दे। तो ये उम्मीद और यथार्थ का एक मिलाजुला सबक है। रिकवरी और मानसिक स्वास्थ्य एक सतत चुनौती है।
ये बहुत गहरी बात है, और अगर बौद्धिक स्तर पर देखें तो
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है कि ये किताब दिखाती है कि फूड सर्विस इंडस्ट्री कम से कम अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जगहों में से एक है। वहां आपकी पृष्ठभूमि, आपकी डिग्री उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत और टीम के साथ काम करने की क्षमता।
मेरिट पर आधारित
काफी हद तक। और बॉर्डन ने यह भी सिखाया कि किसी भी हुनर में महारत हासिल करने के लिए नए नए प्रयोग करने से पहले बुनियादी बातों को पक्का करना कितना जरूरी है। और सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए, बल्कि वो जो खुद करके दिखाए।
सही कहा, और आखिर में एक ऐसा सबक जो हम सब पर लागू होता हो।
तीसरी और शायद सबसे सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि यह है कि किचन कॉन्फिडेंशियल हमें सिखाती है कि कोई भी काम अगर ईमानदारी, लगन और अपने हुनर के प्रति सम्मान के साथ किया जाए तो उसमें गरिमा और सार्थकता मिल सकती है,
चाहे समाज उसे कितना भी छोटा क्यों न समझे।
बिल्कुल। बॉर्डन ने किचन के काम को सिर्फ एक नौकरी के दर्जे से उठाकर एक कुशल कलात्मकता, एक क्राफ्ट के स्तर तक पहुंचाया। यह दिखाता है कि जीवन में अर्थ इस बात से तय नहीं होता कि समाज आपकी भूमिका को क्या मानता है, बल्कि इस बात से कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कितनी निष्ठा और हुनर से निभाते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।